ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार निलोबा रॉय चौधरी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज रूस के ऐतिहासिक शहर कजान पहुंच गए हैं ब्रिक्स देशों की 16वां शिखर सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधित्व करने। कजान के लिए रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि भारत ब्रिक्स देशों से संबंध को महत्व देता है क्योंकि ब्रिक्स एक ऐसा महत्वपूर्ण मंच है जहां विश्व के नेताओं के साथ दुनिया के सामायिक विषयों पर संपर्क कर सकते हैं और मुश्किलों का हल करने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले साल जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स एक्सपेंशन के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है जहां भारत, ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका के अलावा ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट और इथियोपिया के नेता भी उपस्थित होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 पर चर्चा करने आज हमारे साथ भारत के पूर्व राजदूत श्री अशोक सज्जनहार उपस्थित हैं। नमस्कार अशोक जी।
नमस्कार निलोवा।
अशोक जी, इस बार क्या ब्रिक्स देशों की आपसी आर्थिक संबंध को और मजबूत किस तरह से किया जाए और वाणिज्य को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये मूल विषय होगा या और कुछ विषय हैं जिन पे चर्चा होने की संभावना है?
आपने कहा जो पूरी दुनिया के सामने जो आर्थिक मुद्दे हैं उनके ऊपर तो बातचीत होगी, परंतु हमें इसका परिपेक्ष भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं 5 साल पहले पेंडेमिक हुआ था और पेंडेमिक से अभी तक दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी तक उभर नहीं पाए हैं, चाहे वो उनकी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो सप्लाई चेन डिस्रप्शन हो। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिससे वो देश अभी भी पीड़ित हैं और ग्रसित हैं। उसके बाद अभी देश पेंडेमिक से निकले नहीं थे, परंतु फिर हमने देखा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया फरवरी 2022 में। उससे भी बहुत सारे दुनिया के देशों में दुनिया की अर्थव्यवस्था को बहुत ही बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि उसमें हमने देखा खाद्य पदार्थ जैसे गेहूं हो या फिर उर्वरक हो या फिर ऊर्जा हो, तेल हो, गैस हो, उसका पूरी दुनिया में पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि वो यूक्रेन और रूस से ये वाले जो कमोडिटीज हैं ये पूरी दुनिया में जाती हैं। और फिर तीसरा हमने देखा जो अभी ये इजराइल हमास, इजराइल हिजबुल्ला और अब इजराइल ईरान का युद्ध भी शुरू हो गया है, और उसमें हम निलोवा देखते हैं जो शिपिंग जाती है रेड सी से, उसके ऊपर हूती ने वार करना शुरू कर दिया है, और जिससे कि जो वहां की शिपिंग है उसको अफ्रीका से होकर, अफ्रीका के दक्षिण छोर से होकर जाना पड़ता है। तो ये तो विश्व का परिप्रेक्ष्य है जो बहुत यहाँ पर युद्ध हो रहे हैं और पेंडेमिक का अभी भी प्रभाव है। इस बीच में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो रहा है, तो यकीनन जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, जो जब वहां पर वो जाते हैं तो वो ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर बात करेंगे, रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं ये ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं, तो इनको कैसे सुधारा जा सकता है। फिर पर्यावरण के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने जोर दिया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर, आर्थिक सहयोग के ऊपर जोर दिया, और बिल्डिंग रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, और फिर सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो ये तो उन्होंने ब्रिक्स के बारे में उन्होंने जो कहा, जो बातचीत आगे होने वाली है। परंतु इसमें मैं दो मुद्दे निलोबा आपके और जो हमारे सुनने वाले दर्शक हैं उनके लिए बताना चाहूंगा। एक तो राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, जो अभी बहुत देश हैं, करीब 33 देश उन्होंने कहा, जिन्होंने फॉर्मली अप्लाई किया है, वो चाहते हैं जो ब्रिक्स की सदस्यता में वो शामिल हो जाएं। अब उनको कैसे शामिल किया जाएगा? दूसरा है जिसकी बातचीत हो रही है पूरी दुनिया में, वो है डी डॉलराइजेशन, क्योंकि डॉलर का इतना ज्यादा प्रभुत्व है वार्षिक ये पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, तो कैसे डॉलर का ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम किया जाए और जो और करेंसीज हैं उनके साथ डील किया जाए। आखिरी बात मैं इसमें ये कहूंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जो जब उनकी यात्रा होगी तो वो भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है, स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसके बारे में भी बातचीत होगी। और आज हम देखते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कि बहुत अच्छी वार्ता की शुरुआत हुई और उसमें मुझे पूरा विश्वास है जो अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। नीलोवा
अशोक जी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल शुरू होगी और इस बार जो नए आए हुए हैं, जो सऊदी अरब के जो नेता हैं, ईरान के राष्ट्रपति भी आए हुए हैं, तो खास करके ये जो पश्चिमी एशियाई युद्ध का जो माहौल, जो स्थिति है इस वक्त, उसमें इन लोगों के आपसी बातचीत में और ब्रिक्स के ये जो बातचीत हो सकती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। आपको क्या लगता है? क्योंकि जो हालात आपने जो कहा, जिसके बारे में कि रेड सी में ऐसे शिपिंग में प्रॉब्लम्स हैं, वहां से सुएज कैनाल की तरफ से जो सारी जो मरीन ट्रेड वाणिज्य के सारे जो रूट्स हैं, इन सब पे असर पड़ रहा है, और विश्व भर में चीजों की जो दाम है, ये सब मिलने की जो संभावनाएं हैं, ये सब मुश्किल होते जा रहे हैं, और खास करके ऊर्जा के पद्धति वगैरह को, जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह, तो आपको क्या लगता है इनकी जो ये बातचीत होगी कल, आपसी बातचीत इन नेताओं के बीच, इसमें कुछ हल निकल सकता है जी? खास करके क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति वहां पे मौजूद हैं।
जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है निलोवा जो आपने किया है। तो मैं आपको बताऊं, जो इसके ऊपर बातचीत तो जरूर होगी, फॉर्मल सत्र में भी होगी। मैं कहूंगा जो 9 देश हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है जो वो ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। तो हमने देखा है जब जोहानसबर्ग समिट हुआ था पिछले साल, तो उन्होंने निर्णय लिया था जो हम 6 और देशों को आमंत्रित करेंगे ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए। उसमें अर्जेंटीना, जहां पर कि इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति के चुनाव हुए नवंबर 2023 में, और एक नए राष्ट्रपति वहां पर आए, तो उन्होंने कहा वो ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं जो ये एक एंटी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म बनकर उभर सकता है। सऊदी अरेबिया का भी शायद यही सोचना है, तो इसीलिए उन्होंने भी अभी तक निर्णय नहीं लिया है जो वो इसका सदस्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर 9 तो देश होंगे जो ब्रिक्स के होंगे, जो कि इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो मैं समझता हूँ फॉर्मल तरीके से जो उनका सत्र है कल होने वाला है, उसमें तो बातचीत होगी। परंतु आपका एक और प्रश्न था निलोवा, और वो था जो क्या इस बातचीत से हमको कोई हल निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मैं समझता हूँ हल नहीं निकल सकता है, क्योंकि देखिए जो एक और प्रोटैगनिस्ट जिसे कहा जाए, जो इसमें सक्रिय एक्टर है, वो है इसराइल, और इसराइल तो है नहीं यहाँ पर। तो इसलिए कोई इसका हल नहीं निकलेगा, परंतु इनकी जो कजान डिक्लेरेशन आएगी उसमें जरूर इसके बारे में कहा जाएगा जो युद्ध को अंत किया जाए, परंतु हल नहीं निकलेगा। परंतु दूसरी बात मैं जो इसमें निलोवा कहना चाहूंगा वो ये कि रूस ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेशकियान, वो सभी इन नेताओं से मिलेंगे और वो सभी उन नेताओं को अपना पक्ष बताने का प्रयास करेंगे और उन नेताओं को अपने लिए सपोर्ट लेना चाहेंगे। जैसे भारत के साथ ईरान के राष्ट्रपति की मुलाकात आज होनी है, जब राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हो गई उसके बाद उनके साथ होनी है, फिर मेरे विचार से जरूर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति होंगे, वहां मुलाकात करेंगे, चीन और रूस के राष्ट्रपति हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो मैं समझता हूँ जो बहुत देशों के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है वहां पर वो मुलाकात करेंगे और अपने पक्ष को उनको बताने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात मैं ये भी समझता हूँ, जो जरूर एक चीज जिसके ऊपर बहुत नजर रखी जाएगी, जो भारत और चीन के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच में क्या मुलाकात होती है या नहीं होती है। अभी तक अंदेशा जो आ रहा है वो यही है निलोवा, जो दोनों देशों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है। ये जो कल बयान आया है हमारे विदेश मंत्री का और विदेश सचिव का, तो उन बयानों के बाद जो हमने यहाँ पर डिसएंगेजमेंट कर दी है, पेट्रोलिंग के बारे में पूरा निर्णय ले लिया गया है, और आज चीन के फॉरेन ऑफिस ने भी, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी इस पर हामी भरी है, जो भारत के साथ सहमति हो गई है, और अब हम दोनों देश जो मसले थे 2020 में जो आए थे जून में, उसके ऊपर हमने सहमति हो गई है और हम अब आगे अपना काम करना शुरू कर सकते हैं।
ब्रिक्स जो है एक मल्टीलैटरल सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मतलब द्विपक्षीय बातें तो होंगी ही नेताओं के बीच, वो बात अलग है, लेकिन ब्रिक्स के तौर पे परिणाम किस तरह के, एक बड़ी बात जो सुनने को आया है कि ब्रिक्स के देशों के आपसी अगर वाणिज्य के समय अपने निजी ये जो करेंसीज हैं उनमें ट्रेड किया जाए, इस तरीके की बातचीत, इसमें किसी तरह का कुछ निर्णय लेने का संभावना है क्या आपको लगता है?
जी बिल्कुल, देखिए एक पहले कहा गया जो डॉलर की जगह एक अल्टरनेटिव ब्रिक्स करेंसी को चलाया जाए। अब इसके बारे में बातचीत 2, 3, 4, 5 साल से हो रही है और इसने ज्यादा तूल पकड़ा है 2022 के बाद, परंतु मैं नहीं समझता जो इस मुद्दे को लेकर कुछ ज्यादा आगे हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी देश नहीं चाहता है जो अपनी करेंसी को छोड़ दे, और यहाँ पर चीन चाहेगा क्योंकि उसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसका व्यापार सबसे ज्यादा है, तो वो चाहेगा जो ये चाइनीज रेनमिनबी वो बने करेंसी, परंतु बहुत देशों को उसके साथ दिक्कत होगी क्योंकि चीन की जो आक्रामक नीतियां हैं, चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी नीतियां हैं, उससे लोगों को सहमति नहीं है और भारत को तो बिल्कुल सहमति नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं जो कोई कॉमन ब्रिक्स करेंसी बनेगी। परंतु जो आपने कहा है नीलोवा, वो बिल्कुल जरूर हो सकता है, जो एनकरेज किया जाएगा जो आप लोकल करेंसी में अपनी ट्रेडिंग करिए, जैसे अब पिछले कुछ समय पहले मैंने सुना था राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था जो चीन और रूस के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो 90% उनकी लोकल करेंसी में होता है। ऐसे ही मैं समझता हूं जब ईरान और चीन का व्यापार होगा या ईरान का और किसी ब्रिक्स देश के साथ व्यापार होगा तो वो भी लोकल करेंसी में ही होगा, जिससे कि वो प्रयास करेंगे धीरे धीरे करके जो डॉलर का जो प्रभुत्व है उसको कम किया जाए। और दूसरी बात आपने जो पूछी जो ब्रिक्स के संदर्भ में क्या निर्णय लेने की हम अपेक्षा कर सकते हैं, तो वो है जो इसका विस्तारकरण क्या होगा और कितने इसमें मेंबर या जिनको अब राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है जो डेजिग्नेट किया जाएगा एज पार्टनर कंट्री, सदस्य नहीं परंतु पार्टनर कंट्री, और फिर देखा जाएगा जो अब उन्होंने कहा था जो करीब 28 देशों के शीर्ष नेता इसमें सम्मिलित होंगे, और इसमें जैसे मैंने कुछ 2, 4 नाम गिनाए हैं तो उन देशों के नेता आएंगे, एर्दोगान तुर्की के आएंगे, कजाकिस्तान के तुकायव आएंगे, मलेशिया के अनवर इब्राहिम आएंगे वगैरह वगैरह, शायद इंडोनेशिया के तो सुबियांतो आ सकते हैं, तो इसीलिए बहुत देशों के राष्ट्रपति वहां पर होंगे, तो बायलैटरल मीटिंग जरूर होंगी और किन देशों को पार्टनर कंट्री बनाया जाए उसके ऊपर मेरे विचार से विचार विमर्श होगा और निर्णय लिया जाएगा।
मतलब सदस्य नहीं पर सहयोगी देश की बात हो सकती है।
सहयोगी,
अशोक जी, आपके यहाँ आने के लिए बहुत ही शुक्रिया, धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार नीलोवा रॉय चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।